विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वेंकटेश मंदिर लालोराय मॉरिशस में 1000 वर्ष रामानुजाचार्य के आविर्भाव तिथि के महाउत्सव के आज तीसरे दिन में आप सबका प्रातःकाल सत्संग में स्वागत है। जैसे गाय से दूध निकालने के 4 स्तन होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, 4 अदर्स काव के, ऐसे 4 वैष्णव संप्रदाय जिस भी उधर से दूध निकाले दूध निकलेगा, तो चारों वैष्णव संप्रदाय से भगवान विष्णु की, नारायण की, कृष्ण की भक्ति का ही प्रचार होता है। तो 4 स्तन में कोई अंतर नहीं है, इससे दूध निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, एक ही दूध है। तो ऐसे ये चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय बहुत प्राचीन काल से प्रमाणित हैं और इसके ऊपर रात चर्चा हुई थी कि भगवान विष्णु के भक्ति के लिए, नारायण की भक्ति के लिए लक्ष्मी जी ने जो संप्रदाय शुरू की उसको श्री संप्रदाय कहते हैं, जिसका मुख्य आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं। उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं, उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स, उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो वैष्णव रामानुज आचार्य में मूल रूप से पूजा लक्ष्मी नारायण की होती है। और रामानुज संप्रदाय के नॉर्थ इंडिया में रामानंद एक महाराज हुए, वहां सीताराम लक्ष्मण की पूजा होती। तो मुख्य जो पूजा है वो लक्ष्मी नारायण की है। और हम भी जो कृष्ण भावना अमृत संघ में, चाहे राधा कृष्ण की पूजा भी मंदिर में करते हैं, फिर भी पूजा का जो पद्धति है वो भी नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा है। हमारे मंदिरों में पंचरात्रि का विधि के अनुसार जो पूजा करते हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा है। वो बहुत ऑपुलेंट पूजा होती है लक्ष्मी नारायण के स्तर की। जैसे हम जो रास्ता कृष्ण भावना अमृत में अपनाते हैं उसमें दो मार्ग अपनाते हैं, एक भागवत मार्ग जो हमारी साधना का है, और एक पंचरात्रि का मार्ग जो नारद पंचरत्नकार से भगवान के विग्रह की पूजा का है। तो हमारी भक्ति और साधन है वो भागवत मार्ग है, और जो हमारी पूजा की पद्धति है वो पंचरात्र मार्ग है। तो इन दो मार्ग से हमारा साधन चलता है। तो श्रीपाद, रामानुज आचार्य, यहां रामानुज आचार्य के जीवनी में लिखा है, रात श्रीपाद यमुना आचार्य की कथा रात की थी, अगर आपको ध्यान में होगा, कोई आए होंगे तो। यमुना आचार्य 12 साल का छोटा बच्चा, बहुत बड़ा अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रहा था, और उस वक्त से के पांड्य राजाओं के बड़े पंडित कोलाहल को हराया था। किसमें? शास्त्र अर्थ में, डिबेट में शास्त्र के ऊपर। और याद है आपको रात कौन से तीन प्रोपोजिशन दिए थे जिससे बड़ा कोलाहल, रुद्रचिन्ह कोलाहल पंडित हार गया था? ये तीन प्रोपोजिशन दिए थे श्रीपाद यमुना आचार्य ने। उसका नाम यमुना रखा था ईश्वर मुनि ने, उनको तो उसका पिता था, और नाथ मुनि इस संप्रदाय का पुराना आचार्य आलवर है, इनको आलवर कहते हैं। थ्री प्रोपोजिशन याद है आपको कौन सी दी थी जिससे कोलाहल हार गया? पहला उसने कहा कि आपकी माता बांझ नहीं है, आप ये प्रूव करो, योर मदर इज नॉट ए बैरन वूमन, प्रूव दिस। तो कहते मैं आई एम सन ऑफ माय मदर, सो हाउ शी इज बैरन, तो हाउ कैन ही प्रूव? तो वो परेशान हो गया। तो यमुना आचार्य ने कहा चिंता मत करो, एक दूसरा प्रोपोर्शन कर देता हूं। ये हमारा राजा है ना पांडे, वो बैठा था, बोला ये बहुत धर्मात्मा, इज राइटियस पर्सन, अब इसको आप नलीफाई करो। कि ना अब कैसे बोलेगा नहीं है, राजा का तो पंडित है, राजा को कैसे बोलेगा राजा ये धर्मात्मा नहीं है, पापी है? सो ही कैन नॉट आंसर, ही वाज रियली गेटिंग फ्लश, इज कंफ्यूज हो गया। नो प्रॉब्लम, थर्ड बोला एक क्वीन जो है, राजा की रानी है ना, ये बड़ी पतिव्रता है, शी इज वेरी लॉयल टू हिज हस्बैंड, नाउ यू प्रूव दैट शी इज नॉट। अब कैसे बोलेगा रानी को कि तुम पतिव्रता नहीं हो? कोलाहल को बहुत गुस्सा आया कि तुम ऐसे प्रश्न पूछ के, और कैसे मैं राजा को कहूंगा धा धर्मी है, कैसे कहूंगा कोइन को कि वो क्षति नहीं है, इसको दंड देना चाहिए मृत्यु, ये हमको परेशान कर रहा है। लेकिन राजा की रानी ने कहा कि इससे पूछो तो सही है, प्रूव करे कि ये जो कह रहा है ये स्वयं इसको प्रूव कर दे। क्यों? आपको रात बताया था राजा और रानी के बीच में शर्त लग गई थी कि ये 12 साल का बच्चा अगर जीत गया, रानी ने बोला, तो मैं तुम्हारी नौकरानी की नौकरानी, दासी की दासी बन जाऊंगी। राजा ने कहा अगर ये जीत गया तो मैं इसको आधा राज दे दूंगा। तो पूछा यमुना आचार्य से कि आप बताओ, वो कोलाहल पंडित को कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है जिसको एक ही पुत्र है वो माता बांझ है, दूसरा है ही नहीं, तो बांझ के बराबर है, तो तू तो एक ही बेटा है अपनी माँ का, इसलिए तू तो तेरी माँ बांझ है। शी इज अ बैरन बिकॉज़ योर ओनली वन सन. बोला पांड्य राजा तो बड़े धर्मात्मा है, लेकिन कलयुग में प्रजा का धर्म का भी छठा हिस्सा, 6/6 ऑफ द पायस एक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन गोज टू द किंग. ऐसे सिनफुल एक्टिविटीज भी पॉपुलेशन की किंग को जाती है 6%. तो अब राजा कैसे धर्मात्मा, इतने सारे कलयुग में पापी है, तो राजा धर्मी होते हुए भी अधर्म तो इसके गले पड़ेगा ही पड़ेगा. तो बोला राजा की रानी कैसे पतिव्रता नहीं है. तो नहीं नहीं वो अपने पति से बहुत पतिव्रता सेवा करती है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन राजा के अंदर सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण ये सब देवता वास करते हैं, तो रानी ने तो इन 8 आदमी से शादी की, तो कैसे पतिव्रता होगी. ये तो सब राजा में रहते हैं. तो रानी ने उठ के कहा आलबंदार आलबंदार आलबंदार, तमिल में कहते हैं विजयी विजयी, ही इज विक्टोरियस विक्टोरियस, कॉन्करर कॉन्करर, कि बच्चे ने हरा दिया कोलाहल को. फिर पूछा यमुना आचार्य से कि कोलाहल अगर जीतता तो आपको दंड देता, अब आप इसको क्या दंड देना चाहते हो. पर इतना बड़ा पंडित है, इसका सम्मान होना चाहिए, सिर्फ इसका अहंकार खत्म हो गया, अब मैं इसको कोई दंड नहीं देता हूं, ये सुखी रहे यहां. लेकिन राजा ने कहा मैंने वचन किया है आधा राज में आपको दे देता हूं. तो यमुना आचार्य राजा बन गए. तो उनके दादा नाथ मुनि अभी तक जीवित थे. उसने कहा इतना बड़ा भक्त था, अभी राज काज में फंस गया है, भगवान विष्णु को तो भूल ही गया. तो मिश्रा जी उनके एक शिष्य थे, मिश्रा ब्राह्मण नाम है कुछ, रमेश मिश्रा ऐसे कुछ है. उसको कहा नाथ मुनि ने कि अब मेरा आखिरी दिन आ गए हैं, एक काम मैं आपको बोलता हूं, ये यमुना आचार्य को राज काज के आपुलन से निकालकर वापस भगवान विष्णु के चरण में लाओ. तो मिश्रा जी ने क्या किया, नाम है मिश्रा जी का, देख लेते हैं. सो मिश्रा जी वहां गया तो कोई अंदर तो उनको जाने नहीं दे, इतना बड़ा राजा के पास कैसे जाने दे, बड़ी भीड़ लगी हुई है. राम मिश्रा तो उसने क्या किया, जो राजा का कुक था रसोईया, उसको एक स्पिनिच स्पेशल वो जंगल से ला के दिया, बोला इसका सब्जी बना के दो, क्योंकि इस खाने से उसके दिमाग में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जागेगी. तमिल में उसका नाम भी है. तो उन्होंने वो रोज सब्जी बना के देता था, वो बड़ी टेस्टी सब्जी हुई. तो एक दिन मिश्रा ने, राम मिश्रा ने लाया नहीं, स्पिनिच नहीं लाया, पालक नहीं लाया. राजा ने रसोईये को बोला आज क्यों नहीं है वो सब्जी. बोला महाराज वो तो एक साधु आता है देके जाता है. बोला कितना पैसा लेता है. बोला पैसा कुछ नहीं लेता है. बोला बगैर पैसे कौन देगा, हु विल गिव विदाउट मनी. बोला वो कहीं भी हो उसको कल मेरे पास ले आना. एक दिन के बाद फिर राम मिश्रा लेके आया स्पिनिच पालक ले आया. वो पालक बोला नहीं आपको महाराज बुला रहे, उनको महाराज के पास तो जाना ही था. महाराज ने उनको कहा कि तुम पैसे भी नहीं लेते हो, रोज इतना अच्छा सब्जी लाके देते हो, तुम बताओ महात्मा कौन हो. बोला मैं आपके दादा नाथ मुनि का शिष्य हूं. आपका दादा जीवन में यहां से जाने से पहले एक बहुत बड़ा ट्रेजरी आपके लिए खजाना छोड़ के गया है. यमुना आचार्य के अभी तो मेरे को एक दूसरे राजा से लड़ाई करनी है, बहुत बड़े धन की जरूरत है, कहां है खजाना, मैं लेके चलता हूं सेना. बोला सेना नहीं आप अकेले चलो मेरे साथ. बोला कहां है खजाना. बोला 7 दीवारों के अंदर है, सांप उसके ऊपर बैठा हुआ है. राक्षस 12 साल में एक बार पूजा करने आता है, मंत्र से दरवाजा खुलता है, बोला चलो। रास्ते में आए तो यहां लिखा है कि जब वो गीता का पाठ पढ़ने लगा तो यमुना आचार्य को अपना पहले की हुई भक्ति याद आ गई। उसको बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपकी कथा का, अब मैं राजपाट में मेरे को कोई रुचि नहीं है, आपके साथ में चलूंगा। और बोला फिर आप वो खजाना कहाँ है बताओ, खजाना नहीं चाहिए। बोला नहीं अभी तो दिखाऊंगा, आपके दादा ने कहा था मुझे। बोला कहाँ ले गया, बोला ले गया श्रीरंगम। श्रीरंगम में बोला ये 7 दीवारों के अंदर है खजाना। खजाना क्या है, ट्रेजरी क्या है, भगवान विष्णु ये धन है। बोला सांप कौन है, बोला अनंत शेष इसके ऊपर छाया कर रहा है, उसके ऊपर रुके। कौन राक्षस आता है 12 साल में, बोला विभीषण आता है पूजा करने। कौन से मंत्र से खुलेगा, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र जपोगे तो खजाना खुल जाएगा। वो दर्शन करके श्री रंगनाथ का यमुना आचार्य वहीं रहे, वापस राज करने गए नहीं, राजपाट सब छोड़ दिया। तो फिर उनके बहुत से शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य उनका था, उसका नाम था शैलपूरण, सन्यासी था शैलपूरण। शैलपूरण को 2 कन्याएं थी, एक का नाम था कीर्तिमती, एक का नाम था दीपतिमती। तो इनमें से कीर्तिमती जो थी, कीर्तिमती का विवाह हुआ था केशव आचार्य के साथ, वो बड़े यज्ञ करता था, उसका नाम था। और केशव आचार्य और कीर्तिमती के घर में रामानुज आचार्य का जन्म हुआ, और दूसरी बहन दीपतिमती का बेटा हुआ, उसका नाम हुआ गोविंद। तो ये 2 बहनों के ये दोनों बेटे हैं। अब बच्चा नहीं हो रहा था जब कीर्तिमती को, तो कोई आप में से कभी चेन्नई गया हो तो चेन्नई में एक पार्थ सारथी मंदिर है, भगवान कृष्ण अर्जुन मूछ वाला भगवान है उधर, पार्थ सारथी का बहुत प्राचीन। तब चेन्नई गांव था ही नहीं, मद्रास चेन्नई तब नहीं था, जंगल में। यहां लिखा है कि जंगल में पार्थ सारथी का मंदिर था समुद्र के किनारे, जहां अब चेन्नई बन गया, उसकी बहुत पूजा की। और भगवान पार्थ सारथ की पूजा के बाद 1017 में, मतलब 1000 साल पहले आज से, उनके घर में एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ जो आगे चल के रामानुज आचार्य हुआ। तो ये कीर्तिमती और केशव आचार्य के पुत्र और पार्थ सारथी की कृपा से इनका जन्म हुआ। अब इसके बाद रामानुज आचार्य के बचपन में जहां वो विद्या लेते थे वो मायावादी एक सन्यासी थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो एक बार यादव प्रकाश के चरण दबा रहे थे रामानुज आचार्य, तो एक शिष्य एक श्लोक पूछने आया। उस श्लोक में लिखा है कांचीपुरण में आके रहे तो कांचीपुरण में ये शिक्षा हो रही। कांचीपुर की आपको रात बताया था, कांची 2 कांची है, एक शिव कांची एक विष्णु कांची। तो शिव कांची में भगवान शंकर की उपासना होती है जहां शंकराचार्य का मठ है, और विष्णु कांची में वरदराज भगवान जो सबको वरदान देते हैं वो उसका मंदिर है। ये बहुत सुंदर है, हम विष्णु कांची का हम दर्शन किया एक बार, बहुत अच्छी जगह है, सुंदर, भगवान आशीर्वाद देते हैं सबको। वहां जब रह रहे थे तो वो एक श्लोक पूछने आया, वो श्लोक क्या था, लड़के ने आके पूछा, कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षणी। इस श्लोक का अर्थ क्या है गुरुजी? अब पहले शब्द कप्यासम, कपी कहते हैं वैसे बंदर को जनरली, आसम का मतलब है उसका रियर एंड। ये अर्थ कर रहा था यादव प्रकाश। और पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का नाम है, जिनकी आंखें जो है वो लाल है, कैसी लाल है? तो यादव प्रकाश आचार्य ने ऐसा अर्थ किया कि भगवान की आंखें बंदर के रियर एंड जैसी लाल है। तो रामानुज आचार्य को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इनका अर्थ इसका अर्थ है। अब बहुत सुंदर अर्थ किया, कपी कपी कम जलम पीबती, जो जल को पीता है, जल को मीन्स वाटर को पीता है, ये सूर्य, सूर्य जो गर्मी में वाटर को पीता है, ये हो गया कभी पीपत, कभी कपी का पी का मतलब सूर्य जो पीता है पानी, और उस सूर्य के प्रकाश के से जो खिलता है वो कमल। तो कपी आसम का अर्थ है कमल, इज ए लोटस। सो द आईज ऑफ लॉर्ड विष्णु आर लाइक लोटस पेटल्स। तो यादव आचार्य यादव प्रकाश को लगा कि मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ये तो मुझसे ज्यादा मेरे ऐसे प्रवचन के अंदर वो त्रुटि निकाल रहा है। अब एक और श्लोक आया कि भगवान सच्चिदानंद है, तो उसका अर्थ निकाला कि सभी सच्चिदानंद है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान सच्चिदानंद है और कोई सच्चिदानंद नहीं है, और कोई सच्चिदानंद नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है। तो यादव प्रकाश ने कहा कि ये अगर बड़ा हो गया तो हमारे ये अद्वैतवाद माया प्रकाश जो मायावाद को खंडन कर देगा, इसलिए अब ऐसे करें, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि इसको यहां से यात्रा ले चलते हैं और कहीं मार देंगे। तो कहा कि हम चलते हैं यहां से, बनारस जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे। गंगा में स्नान करने का जब मन हुआ तो मां कीर्तिमती उनको कहती नहीं जा बेटा तुम कैसे, लेकिन गया। तो गोविंद ने यह सुन लिया था इसके भाई ने कि इसको मार देंगे। जब एक जगह जंगल में पहुंचे तो गोविंद ने कहा रामानुज को, रामानुज तुम यहां रहना मत, ये तुमको मार देंगे, दे हैव ए प्लान टू मर्डर यू। रामानुज वहां से रात रात को जंगल में निकल गए अकेले, भगवान के भरोसे, विष्णु भगवान रक्षा करेगा, और छोटी उम्र 12-13 साल की उम्र बड़ी नहीं थी। अकेले रात को चलते चलते जंगल से जाके कहीं सो गए, सुबह सरोवर में नहा के तो देखें तो एक शिकारी और उसकी पत्नी, इसको देखा बालक तुम इस जंगल में कैसे हो, यहां तो एक डाकू आएंगे और दूसरा यहां फेरोसिस एनिमल है, बहुत बड़े खतरनाक जानवर है, पशु आपको खा जाएंगे। बोला भगवान विष्णु रक्षा करेंगे, आप कौन है? बोला मैं तो यहां से वापस कांचीपुरम जा रहा हूं। बोला हम भी कांचीपुर जा रहे, आप हमारे साथ चलिए। तो रात को वो जहां सोए थे तो स्त्री कह रही थी मुझे बहुत प्यास लगी है, वो शिकारी की पत्नी। तो उसका पति कह रहा था देखो रात को बाहर अभी नहीं जाएंगे, बाहर डेंजर है, बहुत खतरा है, सुबह होगा तो आगे कुएं से पानी पिलाएंगे। रामानुज आचार्य जाग रहे थे, सुबह जब कुएं के पास पहुंचे तो नीचे उतर के, आपने देखे नहीं है कुएं, इंडिया में कुएं ऐसे हैं कि सीढ़ी से नीचे उतर के जाते हैं, कहीं स्टेप बने हुए, पानी एक पाया, दो पिलाए, तीन पिलाए, बोला और चार पिलाए, चार पानी पिलाया उसको, बड़ी प्रसन्न हो गए वो, और फिर पता नहीं कहां चले गए वो पानी पीने के बाद। तो वो लक्ष्मी नारायण थे जो रामानुज आचार्य को वहां से ले आए, और उसी कुएं के पानी की सेवा रामानुज आचार्य वरदराज के लिए करता था। वो देखा तो मैं तो कांचीपुरम पहुंच गया, उस जंगल से भगवान लक्ष्मी नारायण उस शिकारी के रूप में दिखे, मैं हंटर लक्ष्मी नारायण, और वहां से उनको वापस लाके अपनी मां ने देखा बड़ी प्रसन्न होगी तुम कैसे आ गए अच्छे। वो तो ये तो अपने घर पहुंच गया, तब तक यात्रा करके वापस आए वो यादव प्रकाश वाले सब शिष्य, तो गोविंद नहीं आया। गोविंद कहां रह गया? बोला गंगा में स्नान कर रहा था, हाथ में एक शिवलिंग आ गया, उसने बोला भगवान शिव ने मेरे को दर्शन दिया है, तो यहां से कालहस्ती जगह है अपने तिरुपति के पास में, वहां शंकर जी की पूजा कर रहा है, वो तो शंकर का भक्त बन गया। यादव प्रकाश को कुछ नहीं बताया रामानुज ने, फिर वापस उसकी स्कूल में पढ़ने गया। लेकिन फिर स्कूल के अंदर और 2-3 बार उनका तुम हमारी स्कूल से निकल जाओ, निकाल दिया, तो वो कांचीपुरम जो एक बहुत बड़ा शिष्य था रामा यमुना आचार्य उनके साथ रहने लगे और वरदराज की सेवा करने लगे। तो ये रामानुज आचार्य की पहली पढ़ाई का समाचार है यादव प्रकाश के पास। तो एक दिन एक कथा आती है कि राजा की राजकुमारी को कोई भूत लग गया, आई हंटेड बाय घोस्ट। तो यादव प्रकाश को भूत उतारने का घोस्ट का यहां आपके यहां ओझा ओझा वाला काम आता था। तो वहां जब यादव प्रकाश गया बड़े मंत्र पड़े तो वो लड़की हंसे, भूत उसके अंदर बोले, ए पंडित तेरे तेरे मंत्र से मैं जाने वाला नहीं हूं। और मंत्र पड़े, बोला पागल है, तेरे मंत्र से नहीं जाएगा, अगर तुमको मुझे भगाना है, वो लड़की कह रही है, तो तेरा शिष्य रामानुज को बुलाओ, वो पवित्र है। अब रामानुज को बुलाया, रामानुज आए प्रणाम करके भगवान को, कहते हैं आप इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो भूत। उसने कहा महाराज तुम चले जाओ। बोला मैं चला जाऊंगा, आप एक काम करो, आपका चरण आपका लोटस फीट इस लड़की के सर के ऊपर रखो। ये फोटो निकाल के रखा है लड़की के सर के ऊपर, वो ऊपर कोलाहल बैठा है और ये रामानुज आचार्य चरण रख रहा है, देखो त्रिपूर्ण तिलक वाला कोला वो है यादव प्रकाश। तो लड़की के सर के ऊपर चरण रखो, मैं इसका भूत कह रहा है आपके लोटस फीट से मेरा उधार होगा। तो रामानुज आचार्य ने चरण रखा, बोला अभी मैं जा रहा हूं। बोला हमें कैसे पता लगे तुम जाओगे, तुम जा रहे हो, हाउ कैन वी नो। उसने बोला ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है ना, जैसे बनियान ट्री, जैसे मैं जाऊंगा इसका ऊपर वाला जो शाखा है ब्रांच है धड़ाम से नीचे गिरेगी। जैसे वो गया वो नीचे गिर गई। अब तो रामानुज आचार्य का बहुत चारों ओर से महिमा हो गई, क्योंकि भगवान वरदराज ने इसको दो वरदान दिए थे, एक तो किसी को बीमार को ठीक कर सकते हो, तुम्हारे को ये शक्ति थी रामानुज आचार्य की। तो ये भूत तो चला गया यहां से। अब यमुना आचार्य के मन में आया कि ये रामानुज आचार्य इतना बड़ा वैष्णव है और एक मायावादी के पास पढ़ रहा है, तो यमुना आचार्य दर्शन करने आए वरदराज के। तो वरदराज को प्रार्थना करते हैं कि इस रामानुज आचार्य को इस मायावादी से बचाओ और अपनी सेवा में लगाओ। और वो जानते थे दोनों एक दूसरे को। तो कल ये कथा में रात कहा था कि यमुना आचार्य ने अपने शिष्य महापूरण को कहा कि तुम रामानुज को यहां ले आओ। कहां लेके आओ, श्रीरंगम में लेके आओ। और जब महापूरण वहां आया और रामानुज पानी भरने जा रहा था सेवा में, तो उसको कहा कि रामानुज आचार्य आपके दर आपको बुलाया है। तो घर नहीं गया, सीधा भगवान की पानी की सेवा करके सीधा चला गया वहां। और ये रात की कथा में बताया था, तब तक यमुना आचार्य का शरीर छूट गया, सारे शिष्य रो रहे थे और कावेरी के किनारे उनकी पूजा हो रही थी। और रामानुज आचार्य वहां पहुंचे और उनको दर्शन करते ही देखते रहे, सब लोग चुप होके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो रात ये बात कही थी, तीन उंगलियां यमुना आचार्य की मुड़ी हुई है एक हाथ की। तो रामानुज आचार्य कहते हैं ये उंगली इसकी ऐसे थी पहले गुरुजी की कि अभी। बोला इन आचार्य की उंगली पहले ऐसे नहीं थी, अभी है। तब रामानुज आचार्य ने कहा, एक शब्द बोला कि मैं रामानुज आपको वचन देता हूं, आई प्रॉमिस विथ यू कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर श्री भाष्य लिखूंगा, कमेंट्री लिखूंगा मायावाद का खंडन करते हुए। एक उंगली ऐसे सीधी हो गई डेड बॉडी में। फिर रामानुज आचार्य ने कहा मैं भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार पूरे भारतवर्ष में करूंगा, दूसरी उंगली सीधी हो गई। फिर कहा एक मेरे शिष्य का नाम मैं पाराशर रखूंगा जो विष्णु पुराण का ऋषि है, तीन उंगलियां सीधी हो गई। तो ये तीन वचन रामानुज आचार्य ने यमुना आचार्य के शरीर छोड़ने के बाद उनके विग्रह के सामने किए, उनके शरीर के सामने किए, फिर वापस आ गए रामानुजाचार्य कांचीपुरम में। तो सब शिशु ने कहा कि महापुरण को बड़ा बना दिया अपना, एक कहा कि जाओ उसको लेके आओ रामानुज को यहां। और यमुना आचार्य के पुत्र जो उनका बहुत वारांग नाम है, बड़ा अच्छा गाता था, तो महापुरण फिर लेने आए तो महापुरण 6 महीने रह गए, पत्नी के साथ आए थे और रामानुज आचार्य के घर में रहे। और रामानुज आचार्य शादी किया हुआ था, इनकी पत्नी का नाम यहां लिखा है, वो अपने घर में रह रहे थे। अराइवल इन श्रीरंगम हो गया रामानुज के, महापुरण को सबने भेजा एक, यहां बहुत अच्छा लिखा है कि कांचीपुरण, एक नाम राज कहा था कांचीपुरण। यमुना आचार्य का एक ऐसा शिष्य था जो ब्राह्मण नहीं था, लेकिन इतना बड़ा विद्वान था कि भगवान वरदराज उनसे बात करते थे। तो रामानुज आचार्य उसको गुरु के रूप में स्वीकार करते थे, करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करते थे, बोला आप बड़े ब्राह्मण हो, आप भविष्य के आचार्य हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। लेकिन एक दिन वरदराज ने कहा कांचीपुरण को कि तुम ये शिक्षाएं रामानुज आचार्य को दो। ये रात पढ़ रहा था हमारे वहां अर्जुन प्रभु, अहम एव परम ब्रह्म जगत कारण कारणम क्षेत्रज्ञेश्वर भेद सिद्ध एव महामते मोक्षापयो न्यास एव ज्ञानं मुक्तिमिच्छतां मदभक्तानां यज्ञानां च नान्तिम असमृतिरीष्यते देहावसाने भक्तानां ददामि परमं पदं पूर्णाचार्यं महात्मानं समाश्रियः गुणाश्रियम इति रामानुजाचार्य मयोक्तम वदत सत्वतम। ये भगवान विष्णु वरदराज कहते हैं कांचीपुरम रामानंद आचार्य को, ये मेरी 6 शिक्षाएं दो भगवान दे रहे हैं। पहला क्या है, फर्स्ट, आई एम द सुप्रीम ब्रह्म काज ऑफ मटेरियल नेचर फ्रॉम व्हिच दिस यूनिवर्स हैज कम इनटू बीइंग। पहला भगवान क्या कहते हैं, अहम एव परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म हूं, जगत कारण कारणम, जैसे हम कहते ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कहते मैं जगत का कारण हूं, ये बता दो उसको। सेकंड, सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द जीव सोल एंड द सुप्रीम इज एन एटर्नल ट्रुथ। अब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञो न ईश्वर भेद, हमारे भगवत गीता में आता है 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, जैसे आपके यहां खेत है ना, खेत, तो खेत को एक जानने वाला किसान होता है, एक खेत सारे को सरकार जानती है, तो एक मालिक सरकार सब जमीन की है, आपका खेत तो सरकार को रोड निकालना हो तो निकालेगा, तो सरकार एक खेत का मालिक है, एक खेत का मालिक किसान है, तो किसान है लाइक सोल, और गवर्नमेंट की तरह है भगवान सबका मालिक। तो जीव अलग है, भगवान अलग है, क्षेत्र जरा टू क्षेत्रज्ञ, खेत को जानने अच्छे, ये खेत में क्या करते हैं, बीज बोते हैं, तो शरीर में क्या करते हैं, कर्मों का बीज बोलते हैं, वी पुट सो द सीड ऑफ कर्म एंड देन वी रीप द फ्रूट। तो ये क्षेत्र शरीर क्षेत्र है, इसके जानने वाले 2 है, 2 क्षेत्र के, सोल एंड सुपर सोल। तो ये दूसरा ट्रुथ है रामानुज का सिद्धांत है। और थर्ड, सरेंडरिंग टू द लॉर्ड स्पीड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज द ओनली ट्रुथ ट्रू पैथ फॉर दोज हु डिजायर लिबरेशन मोक्ष उपाय, जिसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, न्यास एव ज्ञानम मुक्ति मिच्छताम, न्यास भगवान का शरण लेगा तो उसको केवल भगवान के माया से मुक्त होके मेरे भक्त बनेगा। ये तीसरा ट्रुथ है. फोर्थ, डिवोटी इज सर्टेन बी लिबरेटेड इवन इफ. बहुत अच्छा है ये, आप सुन लीजिए अच्छी तरह से. ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, मद भक्तानाम जनानाम च नान्तिम असमृतिर ईश्यते. मेरे भक्त हैं, अंत समय मुझे याद नहीं भी कर सके, किसी कारण से बीमार हो गए, तो भी मैं उनको अपनी याद दिलाने का प्रबंध करूंगा, उनका कभी नाश नहीं होगा. सो डिवोटीज इवन आर नॉट एबल टू रिमेंबर सुप्रीम लॉर्ड एट द लास्ट मोमेंट, हियर लॉर्ड विष्णु प्रॉमिस दैट ही विल रिमाइंड देम. डिवोटीज विल सर्टेनली बी लिबरेटेड इवन इफ बाय चांस दे फेल टू रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ. बहुत बड़ी बात. कैसे भगवान करेंगे ये? अपने भक्तों को भेज देंगे और आपको भगवान का कीर्तन सुनाएंगे, नाम सुनाएंगे, याद कराएंगे. इसलिए भगवान के भक्तों के साथ इतना हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए. वी शुड हैव अ गुड रिलेशन विद द डिवोटीज. वन डे व्हेन वी हैव टू डिपार्ट, दे शुड फॉरगेट ऑल देयर बिजनेस एंड कम एंड सिट अराउंड अस एंड रिमाइंड अस ऑफ होली नेम. चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो ये दिस इज ये से भगवान विष्णु. और पांचवा ट्रुथ क्या है? फिफ्थ, एज सून एज माई डिवोटीज गिव अप देयर प्रेजेंट बॉडीज आई ब्रिंग देम टू माई सुप्रीम अबोड. क्या लिख दिया? देहावसाने भक्तानाम ददामी परम पदम. जब शरीर छूटेगा भक्त का तो मेरे धाम में ले जाऊंगा. अब भगवत गीता में देखेंगे तो ज्ञानियों के लिए क्या लिखा है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मेरा शरण लेता है. फिर योगियों के लिए क्या लिखा है छठे अध्याय में? अनेक जन्म सम सिद्धिम. बहुत जन्मों तक सिद्धि करने के बाद परम पद को पाते हैं. और भक्तों के लिए क्या लिखा है? भवामी निचरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम. जो भक्त हैं मेरे उनको तो समुद्रता मृत्यु संसार सागरात एकदम, मैं उनको मृत्यु संसार सागर से स्वयं आके निकाल लेता हूं. बहुजन्म नहीं है. पर भक्ति देयर इज नो मैनी बर्थ, पर ज्ञान मैनी बर्थ, पर योग मैनी बर्थ. पर भक्ति मैं अपने आप आके उनको निकाल लेता हूं, उनको अपना प्रयास करने की जरूरत नहीं है. ये यहां भगवान वरदराज कह रहे हैं कि ये शिक्षा दे दो इनको. और छठा एंड सिक्स्थ, यू शुड इमीडिएटली टेक शेल्टर ऑफ महात्मा महापूरण. ये भगवान वरदराज कहते हैं आप महापूरण के शिष्य बन जाओ. अब ये क्या है? महापूरण दूसरा भक्त है. तो ये कांचीपूरण कहता है कि तुमको गुरु बनाना है तो महापूरण को बनाओ. तो महापूरण कौन है? महापूरण यमुना आचार्य का दूसरा बहुत बड़ा शिष्य. और यमुना आचार्य ने और सबने महापूरण को भेजा कि तुम जाओ और रामानुज आचार्य को यहां लेकर आओ. तो ये अपनी पत्नी के साथ निकला है और वहां आया है तो रामानुज के घर में रहा है और रामानुज को महापूरण ने दीक्षा दी. रामानुज आचार्य को महापूरण आचार्य ने दीक्षा दी है जो यमुना आचार्य का शिष्य था. और 6 महीने उनके घर में रहे हैं. अब एक दिन ये दीक्षा का फोटो निकाला है कि महापूरण यमुना आचार्य को दीक्षा दे रहे हैं. तो दीक्षा के कैसे दीक्षा का पूरा रामानुज को दीक्षा दिया एक एक बाकुल पेड़ के नीचे. और फिर रामानुज आचार्य की पत्नी का नाम था रक्षा कंबल. तो 6 महीना गुरुजी इनके घर में रहे और बड़ी सेवा करते थे रामानुज इनकी. लेकिन एक दिन रामानुज की पत्नी ने अपने गुरु की पत्नी को कुएं के ऊपर पानी भरते हुए कह दिया, तुम लोग एक पानी का हमारा पूरा मटका खराब कर दिया. हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं तो बहुत बड़ा. ये कुछ बोली नहीं लेकिन रो रही थी. तो जब महापूर्ण आए पत्नी से पूछा के तो बोला, इस तरीके से मेरे को रामानुज की पत्नी ने कहा है. तो वो अपना सामान 6 महीने के बाद महापूर्ण और उसकी पत्नी वहां से चले गए रामानुज घर आए वापस तो गुरु नहीं देखा, गुरु की पत्नी नहीं देखा, तो बड़े परेशान हुए, पूछा क्या हुआ, बोला कुछ नहीं अपने आप चले गए। लेकिन पता लगा कि उनकी पत्नी के बुरे व्यवहार से अहंकार के कारण वो चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ रामानुजाचार्य को। और फिर रामानुजाचार्य के लिए लिखा है कि एक दिन एक ब्राह्मण आया रामानुजाचार्य की पत्नी को, कहा कुछ दान, कुछ भूखा हूं कुछ दे दो। उसने कहा नहीं ये कुछ जाओ यहां से। उसको रामानुजाचार्य ने देखा, कहा ब्राह्मण तुम बड़े दुबले पतले लग रहे हो, तुम्हारे को कुछ खाना नहीं मिला। बोला आपके घर के गया था, मेरे को तो धक्के दे के निकाल दिया। अब रामानुजाचार्य ने सोच लिया कि मेरी पत्नी ने मेरे गुरु और गुरु पत्नी की अपमान करके भगा दिया है, अब मेरे को संन्यास लेना चाहिए। अब क्या करते हैं उस ब्राह्मण को रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं कि देखो मैं चिट्ठी एक लिख देता हूं तेरे को, चिट्ठी लिख के तुमको देता हूं, तुम जाके अब मेरे घर में मेरी पत्नी को कहना कि तुम्हारे यानी तुम्हारे पिता के घर से आया हूं, मतलब रामानुज के ससुर के उसकी पत्नी के पिता के घर से आया हूं, और ये चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारे भाई की शादी है और तुमको मैं लेने आया हूं। अब ये ब्राह्मण गया जाके कहा कि हे ब्राह्मणी मैं आपके पिता के घर से आया हूं और आपके पिता ने लिखा है कि आपके भाई की शादी है और आप वहां चलिए। अब तो उसके लिए पूरियां और हलवा बन रहा है। पहले ब्राह्मण आया तो कुछ नहीं खिलाया, अब तो बड़ा उसको माल मिला। और रामानुज घर आए तो देखा कि बोला ये हमारे पिताजी के घर से आए हैं ब्राह्मण, संदेश लाए हैं, चिट्ठी तो रामानुज ने ही लिखी थी। उसने कहा मैं बाद में आऊंगा, आप शादी में जाइए, मुझ मेरी सेवा है कुछ। पत्नी को ससुराल भेज दिया और जाके भगवान वरदराज के वहां डंडा लेके संन्यास ले लिया। अब रामानुज आचार्य ने संन्यास ले लिया तो महापुराण तो वापस चले गए। उन्होंने कहा अब ये रामानुज को वापस कैसे लाया जाए, तो संन्यास के बाद रामानुज को वापस लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोला एक आदमी ला सकता है, यमुना आचार्य का पुत्र वारंग को अगर भेजेंगे, उसको बहुत सुंदर गाना आता है, भगवान का भजन बहुत अच्छा गाता है, और वरदराज के पास गाए और वरदराज उसको प्रसन्न दे के आज्ञा देंगे, तब रामानुजाचार्य यहां आएगा। सो वारंग आए हैं वरदराज के बाद, बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं वरदराज। भगवान वरदराज प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा रामानुजाचार्य को भेजो, तो रामानुजाचार्य को वो श्रीरंगम में लाते हैं। सब ने उनका बड़ा स्वागत किया और सब शिष्यों ने कहा कि अब आप यमुना आचार्य के आश्रम के आचार्य आप बन जाइए। तो यहां एक जगह लिखा है कि यादव प्रकाश अभी तक तो मायावादी था, लेकिन उसके मन में भी आया कि रामानुज का मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और वरदराज भगवान ने कहलाया उसको और वो रामानुज के आश्रम में आए और उनसे शास्त्रार्थ कर रहे थे, और फिर यादव आचार्य ने निर्णय लिया, रामानुज आचार्य का दीक्षा में नाम क्या दिया महापुराण ने, यतिराज। तो अभी इसको सब यतिराज कहते थे रामानुज आचार्य। वैसे रामानुज शब्द का अर्थ आता है राम अनुज, मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रामानुज का अर्थ होता है लक्ष्मण। तो फिर उस यादव प्रकाश ने रामानुज को कहा मुझे शिष्य बनाओ, वो जो उनके गुरु थे मायावादी, वो शरण लेके जाके यादव आचार्य को कहा कि अब मेरे को आप कृपा करके अपना शिष्य बना दीजिए, और शिष्य बन गए और रामानुज आचार्य श्री रंगम में आ गए। और श्री रंगम में आए तो अब रामानुज आचार्य के मन में एक विचार आया, मेरा भाई गोविंद मेरी मौसी का लड़का दीपतिमती का, वो अभी शंकर जी की पूजा कर रहा है, वो तो बड़ा भागवत पुरुष था वैष्णव था, तो उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी शैल पूरण को जो नाना है इनका, उसको कहा कि आप गोविंद को कैसे भी भगवान विष्णु की सेवा में लाओ। तो वो बहुत अच्छे सुंदर गा रहे थे, एक दिन देखा गोविंद पत्ता फूल फूल ले जा रहा था भगवान शंकर की पूजा के लिए। उसने कहा किसके लिए फूल ले जा रहे हो? बोला शंकर की पूजा के लिए। बोला शंकर तो बभूति लगाता है, वो तो कहता है एक शब्द बहुत सुंदर लिखा है शिक्षा में बड़ा अच्छा लिखा है शब्द शंकर जी के लिए, कि भौतिक सारी इच्छाओं को शंकर जी ने तो राख समझ के फेंक दिया है, उसको क्या फूल अर्पण करना। अब तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बोला अंतर क्या है दोनों में? तो शैलपूर्ण ने उसको उतने प्रेम से समझाया कि गोविंद शैलपूर्ण का शिष्य हो गया। तो शैलपूर्ण ने कहा आप जाओ रामानुज के पास। बोला नहीं, मैं गुरु की सेवा करूंगा। और गोविंद इतनी अच्छी गुरु की सेवा कर रहे थे, आगे जब ये प्रसंग आएगा कि रामानुज आचार्य ने अपने शिष्यों के साथ अलवार के लिखे हुए हजार विष्णु के महिमा का किताब पढ़ते पढ़ते देखा, शैल मतलब जहां तिरुपति बालाजी का मंदिर है वेंकटेश पर्वत के ऊपर, उसके दर्शन करने का तीसरी बार फैसला किया गया, उसका दर्शन करेंगे। तो जब दर्शन करने के लिए वहां जा रहे थे तो बीच में एक प्रसंग आता है कि एक गांव में रुकना था, उनके दो शिष्य थे, एक यज्ञेश नाम का शिष्य था जो बड़ा धनी था, और एक बहुत गरीब शिष्य था जिसके घर में कुछ नहीं था। तो पहले दो शिष्यों को भेजा रामानुज ने कि जाओ मेरे यज्ञेश शिष्य को बोलो गुरुजी आपके यहां आके रुकेंगे। यज्ञेश बड़ा खुश हो गया, तैयारी करने लगा, लेकिन वो दो बेचारे पैदल गए थे, उनको पानी भी नहीं पिलाया। वापस आए, गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोला महाराज बड़ा खुश था आपके आने के लिए। बोला आपको कुछ दिया? बोला हमको पानी नहीं पूछा। बोला इसके घर नहीं जाएंगे, वैष्णव का सेवा नहीं किया। बोला गरीब के घर में जाते हैं। गरीब घर में ना ही था, भिक्षा लेने गया था। वो गरीब का नाम कुछ वर्द ऐसा है, वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी घर में थी। और गुरुजी घर में आए, पत्नी बड़ी खुश हो गई, उसको आसन दिया, बिठाया, पानी दिया लाके कुएं से। बोला आप थोड़ा नहा लो, ये सामने तालाब है, वहां नहा के आ जाओ, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। पति तो अभी आया नहीं, पर ऐसी अद्भुत कथा लिखी है। पत्नी ने कहा मैं अभी कैसे, गुरुजी घर पे आए हैं, गुरु भगवान के समान है, भगवान के प्रतिनिधि है, हमारे घर में आए हैं, इसको कैसे मैं कहां से लाऊं। अब उसके मन में आया कि ये जो दुकानदार है सामने ग्रोसरी वाला, ये बहुत दिनों से कितने स्त्रियों को मेरे पास भेज रहा था, उसकी काम वासना की नीयत मेरे में थी, मैंने तो उनसे बात करना पसंद नहीं की, हम भूखे रहने को तैयार हैं, धन नहीं चाहिए, उसका कुछ सामान नहीं चाहिए, लेकिन आज गुरु जी आए हैं, मुझे इनको भोजन की सामग्री चाहिए। वो सीधी चली गई उस बड़े धनी सेठ के पास। बोला देखो हमारे घर में गुरु जी आए हैं, हमको सामान सादे के लिए भोजन का सामान चाहिए, तुम बहुत समय से मेरे को भेज रहे थे निमंत्रण, आज शाम को मैं आपकी काम इच्छा पूरी करूंगी। ये करके वो आई तो घर में सामान आया, इसने प्रसाद पकाया बहुत अच्छा, रामानुज आचार्य और उसके शिष्य ने खा के बड़ी प्रशंसा की, बहुत अच्छा मान प्रसाद है। वापस पति घर में आया, बोला गुरुजन आए हैं, बड़ा खुश हुआ, बोला इनको भोजन। बोला भोजन क्या? रामानुज से बहुत अच्छा भोजन खिलाया। पत्नी से पूछा ये कहां से सामान आया, अपने घर में तो था नहीं। तो पत्नी उसने सच्ची बात बताई कि पतिदेव ऐसे में चली गई थी, वो जो पड़ोसी है वो हमेशा इस तरीके से बुरी नीयत वाला था, लेकिन आज मैंने कहा गुरुजनों की सेवा करनी है। पति को क्रोध नहीं आया, उसने कहा आज आपने एक पति भगवान है और कोई पति नहीं है, और उसका प्रतिनिधि गुरु है, आप इसके लिए अगर ये काम किया है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और तब रामानुज आचार्य के सामने ये बात आ गई। तो रामानुज आचार्य ने कहा, सब जब सुना कि कितना मेरे शिष्यों ने समाज के कस्टम के सारे रूल्स रेगुलेशन का, जो गोपियों जैसे परित्याग गोपियों ने किया था, रामानुज आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आप ये प्रसाद जो बचा हुआ है ये उस सेठ को दे के आओ। पति पत्नी दोनों गए, पति बाहर खड़ा हो गया, पत्नी अंदर गई कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद खाइए, मैंने वचन दिया था मैं आई हूं। बोला और कौन? बोला मेरा पति बाहर खड़ा है। तो तुमने पति भी साथ आया, इसका मतलब ये तो पतिव्रता है, कोई चोरी छुपी नहीं है। उसने प्रसाद खाया, उसका हृदय बदल गया, वो तो चरणों में पड़ के कहता है कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, इतनी बड़ी गुरु भक्त और भक्तन को उनसे मैं बुरा विचार किया, मेरे को आप क्षमा करने, वो आए और रामानुजाचार्य के शिष्य बने। तो ऐसे ये जब पता यज्ञेश को लगा कि गुरुजी हमारे घर नहीं आए, कहाँ गए, मैंने बड़ी तैयारी की, बोला टेंट वेंट लगा लिया, फूल वूल मंगा लिए, गुरुजी तो आए नहीं, तो वो जाके पूछता है, तो गुरुजी ने कहा तुमने वैष्णव अपराध किया, तुमने पहले जो वैष्णव तुम्हें संदेश देने आया उसको तो पानी का पूछना था। बोला महाराज मैंने वैष्णव अपराध के विचार से ऐसे नहीं किया, मैं आपके आने का सुन के इतना आपके अरेंजमेंट में लग गया कि मुझे उनका पूछना भूल गया। तो वामन ने कहा अभी तो हम नहीं आएंगे, अभी तो हम जा रहे हैं श्री तिरुपति में और वेंकटेश का दर्शन करके वापसी में आते हुए आपके घर में अतिथि बनेंगे। तो महाराज ने उसको क्षमा किया, लेकिन बड़ी सिद्धांत यह है कि गुरु की सेवा गुरु को अच्छी तब लगती है जब भक्तों की सेवा की जाती है। तो मेरे लिए खुश हो गया, मेरे भक्तों को पानी भी नहीं पूछा, उसके घर नहीं गए, और दूसरा गरीब था उसके घर चले गए रावण। तो बात कर रहे थे कि जब शैलपूर्ण के पास गए, जब पहुंचे तिरुपति में, तो रामानंद ने कहा ये जो पर्वत है ये तो भगवान का धाम है, इसमें भगवान रहते, इसके ऊपर मैं कैसे चढ़ूं। जैसे हम आज भी गौड़िया वैष्णव को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गोवर्धन न चढ़ी बो, गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना, गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि गोवर्धन भगवान का स्वरूप है विष्णु का, इसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे। कुछ लोग ग्वाल बाल चढ़ते हैं, लेकिन हम तो केवल परिक्रमा करते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर भी चढ़ने का सबको नहीं चाहिए। हम एक बार गए दीन बंधु और हम एक महात्मा के पास नंदगांव में, तब हम रथ यात्रा से आए थे और हम दोनों ऊपर चढ़ गए, चढ़ गया था। तो दीन बंधु प्रभु कह रहे थे कि हम जगन्नाथपुरी गए थे और बाहर रथ में चढ़े, तो वो महात्मा कह रहा था भगवान का रथ, भगवान का सवारी के ऊपर हम कैसे चढ़ सकते हैं। जैसे गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसे रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये तो अपराध हो जाता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा। सब शिष्यों के साथ बैठ गए ऊपर से, शैलपूर्ण और सब लोग आए, कहा देखो आप जैसे महात्मा भगवान के, अगर आप ऊपर नहीं चढ़ोगे तो आने वाले भविष्य में कोई नहीं आएगा, भगवान का दर्शन कौन करेगा, इसलिए आप कृपा करके ऊपर चढ़िए। तो रामानुजाचार्य ने पैदल चढ़ना शुरू किया, चढ़ाई बहुत मुश्किल है, ये गया था, कहाँ गया हमारा वो तिरुपति ऊपर पैदल चढ़ा था, थक गया था ना बीके ऊपर, तो चढ़ाई बहुत मुश्किल है, वो चढ़ाई कर रहा था ऊपर। तो आधे में शैलपूर्ण स्वयं प्रसाद लेके आए, उनका सोसर, उनका नाना, बोला आप इतने बड़े महात्मा, बोला किसी बच्चे के साथ भेज दिया, मैंने बोला ढूंढा लेकिन आपके योग्य कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए मैं खुद लेके आया। तो उधर गोविंद की बात चल रही थी, गोविंद शिष्य बन गया किसका, शैलपूर्ण का। गोविंद को देखा रामानंद ने एक दिन कि अपने गुरु की, गुरु का बिस्तर बना रहा है उसके ऊपर सो गया, फिर उठा, रामानुज ने जाके बताया शैलपूर्ण को कि ये आपका शिष्य कैसा है गोविंद, ये आपके बिस्तर के ऊपर सो रहा था। उसने बुलाया शैलपूर्ण का, गोविंद तुम बताओ कोई गुरु के बिस्तर के ऊपर सोए उसका क्या परिणाम है, बोला वो नरक में जाएगा। बोला फिर ये कह रहे हैं रामानुज के आप मेरे बिस्तर के ऊपर सोए थे नरक में जाओगे, बोला मैं जानता हूं, लेकिन आपका बिस्तर बनाते समय मैं देखता था कि ये आराम आपको देगा कि नहीं, क्योंकि बिस्तर क्या है कि वो घास वास नीचे रख के और उसके ऊपर चादर, मैं देखता था कहीं कुछ लगता है तो उसको सीधा करता था। तो रामानुज ने कहा ये तो बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहा था, ये गुरु के बिस्तर का भोग नहीं करता था, ये तो गुरु के लिए अच्छा बिस्तर बनाने के लिए, जैसे कोई चक के भगवान को बेर खिला रही है कि खा रहा तो नहीं है। एक बार एक सफाई करने वाली राजा के बिस्तर की सफाई कर रही थी, थकी हुई थी, ऐसे मन में आया कि कितना आराम वाला राजा का बिस्तर होगा, सो के देखती हूं, सो गई, नींद आ गई। राजा आया, देखो कि ये तो नौकरानी सोई हुई है, राजा को क्रोध आया कि इसको फांसी चढ़ा दो। उसको बोला तुम्हारा आखिरी, What is your last desire? उसने मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपके इस बेड पे मैं दो आधा घंटा सोई हूं, उसको फांसी मिल रही है, तो आपका क्या हाल होगा महाराज, रोज रोज इसके ऊपर सोते, What will happen to you? एक आदमी ने कहा कि जिसका इसका कोई मुंह देखेगा ना तो उसका काम नहीं होगा, तो राजा ने उसका मुंह देख लिया, बोला इसको फांसी चढ़ा दो। उसने बोला पूछा आपका क्या राजा, आपका आखिरी क्या डिजायर है? उसने बोला मेरी आखिरी डिजायर ये है कि मेरा मुंह देखने से लोगों का काम नहीं होता है, लेकिन महाराज मैंने आपका मुंह देखा मेरे को फांसी चढ़ना पड़ा है। और राजा को लगा कि इसको छोड़ दो, ये कहते हो ठीक कह रहा है कि मेरा मुंह देखा, ये सीन मी एंड हिज एंड, सो इट मींस आई एम बेटर देन हिम। एक दिन फिर गोविंद को देखा श्रीपाद रामानुजाचार्य ने, तो एक सांप है उसके मुंह में उंगली डाल रहा है। उसने बोला कैसा आदमी है सांप के मुंह में उंगली डाल रहा है? वो फिर जाके पूछा गुरुजी को, बोला ये क्या करता है? पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया गोविंद? बोला सांप कुछ खा रहा था, कांटा अटक गया था अंदर, और सांप बेचारा दड़ा पीड़ित था, तो मैं वो कांटा निकाल रहा था। बोला इतना दयालु कि सांप के मुंह का कांटा निकाल रहा था, और कांटा निकाला सांप, बोला मर नहीं गया है, थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया, अब उठेगा, और सांप उठ के चला गया। बोला इतना बड़ा दयालु है गोविंद। तो जब तिरुपति का दर्शन करके कुछ दिन रह के जब वापस आ रहे थे रामानुजाचार्य, तो शैलपुर ने कहा मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ, रामायण एक साल पूरी सुनी। शैल पूर्ण महात्मा ने एक साल वाल्मीकि रामायण पूरी सुनाई रामानुजाचार्य को, राम कथा रोज होती थी, एक साल वहां रह गए। जाते समय कहा आपको क्या दूं? बोला गोविंद मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा गोविंद ले जाओ, वो गोविंद को लेके आए, और रास्ते में एक जगह रुके कांचीपुरण में, तो गोविंद बड़ा दुखी दिखा। तो कांचीपुरण ने कहा ये दुखी इसलिए है कि गुरु से आया है वापस, तो इसको गुरु की सेवा की इच्छा है। तो रामानुज ने कहा तुम दुखी मत जाओ, अपने गुरु के पास जाओ। ये वापस चला गया शैलपुरण के पास। शैलपुरण बात भी नहीं की, दो दिन भोजन नहीं पूछा, ये सेवा कर रहा है बोलते नहीं है। तो शैलपुरण की पत्नी ने कहा देखो आपकी सेवा कर रहा है, दो दिन से भूखा है, उसको भोजन तो पूछो। तो उसने कहा कि घोड़ा जो मैंने दूसरे मालिक को भेज दिया, अगर मेरा घोड़ा था, मेरा हॉर्स था, अब मैंने दूसरे मालिक को भेज दिया, फिर मैं उसको क्यों खाऊं खिलाऊं? If I have sold my horse to some other master, why should I feed him? ये जब गोविंद ने सुना इसका मतलब है कि रामानुज मेरा भाई नहीं है, मासी का लड़का नहीं है, कजन नहीं है, वो मेरा गुरु है, इसका मतलब गुरु जी ने मुझे उसको दिया है। तो गोविंद वहां से वापस आया, रामानुज की प्रति अब उसका भाव जो है कजन का नहीं है, गुरु का भाव गोविंद ने रखा। गोविंद की मां ने आके एक दिन दीप्ति को कहा कि बहुत समय से शादी की थी, इसकी पत्नी बड़ी हो गई, अभी अब इसको घर में रहना चाहिए और गृहस्थी को पालन करना चाहिए। और गोविंद को घर में रामानुज ने भेजा, लेकिन वापस आया दो दिन से, बोला मेरा हृदय पवित्र नहीं है, आपने कहा पवित्र हृदय से गृहस्थ में प्रवेश करो, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर गोविंद ने दीपति माता की परमिशन लेके संन्यास लिया, और उसको नाम गोविंद को नाम दिया संन्यास का रामानुज आचार्य ने, दोनों भाई फिर सन्यासी हो गए। तो गोविंद की बात बीच में आई तो इसलिए बता दिया। और इसके बाद रात गोष्ठीपूर्ण की बात तो आपको बताई थी, गोष्ठीपूर्ण दूसरा गुरु था। हमने कहा पांच यमुना आचार्य के महान शिष्यों से रामानुज आचार्य ने शिक्षा ग्रहण की, पांच गुरु की, एक कांचीपूर्ण, एक महापूर्ण जिससे दीक्षा ली, और उनके शरीर के ऊपर निशान लगाए शंख चक्र पद्म गदा इसका, और तिलक का नहीं, वो गर्म करके ऐसे निशान लगा दिया हमेशा के लिए, ऐसा लिखा है कि दीक्षा ऐसे हुई उनकी। और फिर गोष्ठीपूर्ण जिसने उनको ओम नमो नारायण मंत्र दिया, और जिसको उसने सबको बता दिया, ये रात कथा की थी, का इतना बड़ा उद्धार है कि सबका भला चाहता है। गोष्ठीपूर्ण ने अपने पुत्र का, अपने पुत्र को बुला के कहा कि आप रामानुज के शिष्य बन जाओ। और गोष्ठीपूर्ण का बेटा सौम्य नारायण, उसको रामानुज का शिष्य बना दिया, ये गोष्ठीपूर्ण उनका गुरु हो गया। उसके बाद एक आता है दशरथी नाम का शिष्य रामानुज आचार्य का था, एक दिन आया उनसे पूछा कि हमारे को सर्वधर्मान परित्यज इस श्लोक का अर्थ सुनाओ। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम गोष्ठीपूर्ण से ये पूछ के आओ। तो वो गोष्ठीपूर्ण की सेवा करने लगा। एक दिन पूछा कि मेरे को गुरुजी ने भेजा है, इसका अर्थ बताओ। बोला आपको कुल का अहंकार है, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक तुम इस अर्थ को नहीं समझ पाओगे। ये वापस आया, रामानुजाचार्य ने कहा दशरथ जी क्योंकि तुम मेरा रिश्तेदार हो और तुम्हारे से मैं थोड़ा रियायत कर दूंगा, इसलिए तुम गोष्ठीपूर्ण से जब सुन के आया तो बड़ी निम्रता से सेवा करना। उस दिन वापस आया, दशरथ ही बैठा है तो महापूरण की बेटी जो इनके गुरु था उसका शादी कहीं हो गया, तो उनकी सास कहती थी 2 किलोमीटर दूर जाओ पानी भर के आओ तालाब से या कुएं से। रास्ते में जंगल था, उसको डर लगता था, तो उसकी सास ने कहा कि तुम, उसने बोला मेरे को डर लगता है मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। बोला नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे बाप ने कोई काम करने वाला साथ थोड़ी भेजा है जो यहां पानी भरेगा और रसोई करेगा, तो जाओ पहले वो कोई लाओ। तो बेचारी वो वापस अपने पिता के घर आ गई। तो वो महापूरण को कहा कि मेरी ये समस्या है, मेरी सास ने मेरे को निकाल दिया क्योंकि मैं पानी नहीं भर पड़ने जा रही थी, वो जो मुझे डर लग रहा था। बोला जाओ रामानुज के पास, आपका सास आपके समाधान करेंगे। रामानुज के आचार्य के पास आई, बैठी है सामने लड़की अपने गुरु की। और दशरथी अभी वापस आया है गोष्ठी पूरण से ये सीख के कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरी सास ऐसे कहती है कि घर से कोई तुम पानी भरने और रसोई बनाने वाला लेके तो नहीं आई। और रामानुज आचार्य ने दशरथी को कहा दशरथी तुम इस कन्या के साथ जाओ, इस लड़की के साथ जाओ, इसके घर में किचन का काम करो, पानी भर के आओ। इतना बड़ा सन्यासी दशरथी, बहुत बड़ा पंडित विद्वान शास्त्रज्ञ, वो रसोई के अंदर किचन में काम करे उसकी लड़की के, रोज पानी भर के आए 2 किलोमीटर जाके। अब उसकी सास खुश, उसके घर में शांति लगी है। एक दिन कोई पंडित गांव में आया और एक का अर्थ कर रहा था मायावाद का, ये दशरथी ने कहा ये अर्थ ठीक नहीं है। बोला तू किचन के अंदर काम करने वाला रसोईया, जा तू सब्जी काट, तू कहां यहां शास्त्र अर्थ करने आया है। उसने जब शास्त्र का अर्थ किया तो सब लोगों ने कहा ये तो बड़ा पंडित है, ये तो ठीक कह रहा है, गलत नहीं है। अब सबको पता लगा कि ये दशरथी जो काम कर रहा है नौकर जैसा किचन का, ये बहुत बड़ा पंडित रामानुज का शिष्य। तब दशरथी वापस आया तो रामानुज ने कहा अब आपको सर्वधर्मान का अर्थ आया समझ में। सर्वधर्मान का अर्थ ये है कि कैसी भी परिस्थिति में ना अपने ज्ञान का अहंकार करना है, ना अपने कुल का अहंकार करना है, ना अपने धन का अहंकार करना है, कैसी भी सेवा में लगना पड़ेगा तो लगना चाहिए। तो दशरथी को इस प्रकार से रामानुज आचार्य ने सर्वधर्मान परिचय जो भगवत गीता के, भगवत गीता के ऊपर रामानुज आचार्य की बहुत सुंदर टीका है, बहुत विशाल टीका है, और वेदांत सूत्र के ऊपर तो बहुत बड़ी टीका है जिसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत चर्चा की है। और इसके बाद दशरथी के बाद ये आता है, अब धर्म सीखना था रामानुज आचार्य को, तो ये चौथा शिष्य किया, किसका शिष्य बने, वारंग का, जो यमुना आचार्य का पुत्र था उनके शिष्य बने। उन्होंने जो श्लोक कहा है वो श्लोक भी बहुत अच्छा है। गुरुरेव परम ब्रह्मा, गुरुरेव परम धनम, गुरुरेव पर कामो, गुरुरेव परायणम। जो व्यक्ति अपने गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानता है, उनसे अलग नहीं है, उनकी सेवा करता है, उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, वही धर्म को जानता है। ये धर्म का उपदेश दिया है, धर्म इसको कहते हैं जिसको हमारे गुरु पूजा में रोज गाते हैं, यश्य प्रसादा भगवत प्रसादो यश्य प्रसादा नगत फूट होते। धर्म ये है कि गुरु ने जो कहा, ये जो श्लोक है भगवत गीता का, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदन बहुशाखा अनंतास बुद्धियो व्यवसायी नाम, ये धर्म शब्द है इसमें बहुशाखा अनंतम क्या है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, इसका अर्थ क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका अर्थ लिखा है कि गुरु के वचन को सब कुछ समझ के अपने जीवन अर्पण कर देना, यह है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। और प्रभुपाद जी ने जब ये पढ़ा तब उन्होंने कहा मेरे गुरु ने मुझे कहा है अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है पाश्चात्य देश में, वो इस्कान की स्थापना, the foundation of the इस्कान, the revelation was by the commentary of विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर on this verse, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो गुरु के वचन, वो यहां ये वरंग ने कहा कि ये जो शिक्षा धर्म है ना, धर्म वो है जो गुरु देता है, गुरु ही शास्त्र का सार है। तो यहां रात कहा था, आज फिर सुन लीजिए। इन दिस वे रामानुज वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय यमुना आचार्य फाइव मोस्ट इंटीमेट डिसाइपल्स, पांच यमुना आचार्य के शिष्यों ने से शिक्षा ग्रहण की। कौन से? महापूरण, जिन्होंने पहले दीक्षा दिया, यतिराज नाम दिया, गोष्ठी पूर्ण, जिन्होंने ओम नमो नारायण मंत्र दिया, मालाधर, जो उन्होंने को सारी टीकाएं बताई, और चौथा है वारांग, जो उन्होंने धर्म बताया, और उसके बाद वारांग, मालाधर, गोष्ठी पूर्ण, महापूर्ण एंड कांची पूर्ण, पांच। और फिर लिखा है, नाउ इट अपियर्ड दैट आलबंदर वॉज प्रेजेंट अगेन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ए प्योर डिवोटी रामानुज आचार्य। इन पांच की शिक्षा से ऐसे लगता है कि यमुना आचार्य फिर रामानुज आचार्य के रूप में प्रकट हो गए। मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले एक दिन प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के दिन, जन्माष्टमी के दूसरे, अपने इंद्रदिम्न महाराज प्रभुपाद के महिमा में कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद भागवत के ऊपर जब राधा गोविंद महाराज बोलते हैं तो लगते हैं कि भागवत का आपका उनके मुख से सुनना चाहिए, पुस्तक वितरण का आपका जब मूड को देखते हैं गोपाल कृष्ण महाराज का, लगता है कि उसके अंदर पुस्तक वितरण के रूप में आप प्रकट हुए हैं, और आप जब शास्त्र के श्लोकों को एक के बाद एक कोट करते थे, ये जो भक्ति विश्रम्भ महाराज को देखते हैं तो श्लोक और एक नाम कोट करता है, तो उन्होंने ऐसे कुछ प्रभुपाद के शिष्यों का नाम लेके कहा कि एक प्रभुपाद के गुण इन सब में किस तरीके से देखो विद्यमान है। तो उस दृष्टिकोण से ये पांच शिष्यों से रामानुज आचार्य यतिराज जो है उन्होंने यमुना आचार्य के भाव को सिद्ध किया। अब एक, मेरे ख्याल टाइम ज्यादा हो गया प्रसाद का, लेकिन एक थोड़ी कथा इसलिए बताना जरूरी है कि रामानुज आचार्य के अपियरेंस से 300 ईयर बिफोर एक तिरुमंगाई, ये आप देखे नेट में, मैं देख रहा था तिरुमंगाई नाम से, उसमें आपको मिलेगा एक अलवार, ये जो दक्षिण भारत के जैसे हम कहते हैं ना हमारे गुरुजन आचार्य, वो अलावार कहते हैं, तो तिरुमंगाई एक नाम का बहुत बड़ा संत था, उसके तीन शिष्य थे, थ्री डिसाइपल थे, और पहले की क्या उसका नाम है वजक्कन, दक्षिण का नाम है वजक्कन, उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी, किसी के साथ डिबेट करता है तो घंटों उसको उलझाए रखेगा, But he talked with him and then he is confused in that and he always defeat him in debate. दूसरा शिष्य था, उसका नाम था तालुद्वन, उसके पास क्या एक्सपर्टी थी, वो कोई भी ताला बगैर चाबी के खोल सकता था। तीसरा शिष्य था जिसका नाम था निजल्लाई, और उसके में क्या कम, उसके पास क्या मिस्टिक पावर था, वो किसी के भी शेडो के ऊपर पांव रखे छाया के ऊपर तो वो चल नहीं सकता था। एक दिन अपने तीनों शिष्यों के साथ ये तिरुमंगाई श्री रंगम में आए तो देखा कि भगवान श्री रंगनाथ का मंदिर एक जंगल में पड़ा है, विभीषण ने इस मंदिर को स्थापित किया था त्रेता युग में, अब खंडर पड़ा है, खंडर का मतलब एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग जिसके अंदर बेड्स और ये जस्ट आइसोलेटेड डिसोलेटेड पड़ा है। उसके मन में आया बहुत अच्छा मंदिर बनाना चाहिए, लोगों को कहा भाई कुछ दान दो मंदिर बनाना है, लोग बोले दान नहीं देंगे, 10 रुपया दे कोई 5 रुपया काम नहीं हुआ, इन्होंने बोला ये कलयुग के लोग है ऐसे पैसा नहीं देंगे, अब क्या करना चाहिए, बोला तीनों शिष्यों को बोला अब ऐसे करेंगे ये लोग ऐसे पैसा नहीं देते हैं, अब तुम पहले क्या करो, तुम जाके इनको डिबेट में लगा दो। पहले शिष्य को कहा तो वो सेठ से जाके बातें करता, और जब बातों में सेठ बिल्कुल सेठ लग जाता तो दूसरे को कहता अब तुम ऐसे करो, इसका खजाना खोलो। तो चाबी के बगैर खोलना आता था, और सारा धन उठा लेते थे चोरी करके, और लाए और चोरी करके एक का धन लेके आए, और धन के लेके आए और लाने के बाद क्या किया, और लाने के बाद पहला कहते पहली दीवार श्री रंगम की 2 साल में तैयार की। जय श्री रामानुजाय नमः। ओह, वी आर स्पीकिंग अबाउट द श्री रंगम टेम्पल वॉज बिल्ट बाय दिस अलावार तिरुमंगाई। कैसे किया वो डाकू, अब कोई लड़ने आए तो उसकी छाया के ऊपर वो पांव रखे वो हिल नहीं पाए। इफ समबडी कम आउट देन ही स्टॉप देम लाइक दिस। सो पहली वॉल, द फर्स्ट वॉल 2 ईयर्स, सेकंड वॉल 4 ईयर्स, थर्ड वॉल 6 ईयर्स। फिर तो बहुत डाकू उनके साथ हो गए, और ये सब मिलकर 60 ईयर्स में ये टेम्पल बना। इसने बनाया 60 ईयर, और ये 80 ईयर का था जब टेम्पल बना। सो एक दिन बाकी जो डाकू थे, रेस्ट ऑफ द डैकवाइट्स, उन्होंने बोला हमारा हिस्सा दो, आपने सब पैसा लगा दिया मंदिर में, हमारा कहां है, चोरी तो हम भी साथ किया। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा तिरुमंगाई ने कि अब इनको कहां से देंगे। तो कहा इनको कहा कि एक शिष्य ने कहा उनके आके कि इनका बहुत सा धन हमारे गुरु जी का नदी के उस तरफ है, आपको देते हैं। बोला चढ़ो नाव में। नाव में चढ़ के अंदर गए तो बीच में आया तूफान। तूफान आया तो सब चिल्लाने लगे, और इसको मिस्टिक पावर था, ये पानी के ऊपर चल सकता था, और सब डाकू उधर मर गए और ये पानी के ऊपर चल के आया। बोला ये डाकू को मारा क्यों। बोला देखो अभी ये और चोरी करते तो और पाप उठाते, कम से कम इनकी चोरी से रंगनाथ मंदिर बना, और उसके बाद ये कावेरी में जाके इनका तृपण हो गया तो ये मरना इनकी मुक्ति हो गई, ये बच गए हो गए तो और पाप ज्यादा करते। तो ये श्री रंगम मंदिर कैसे बना है, ये तिरुमंगाई ने और 3 शिशु ने लोगों को लूट के, इसका आपका मंदिर नहीं बन रहा है ना फिनिक्स का। 3-4 भक्त बनाओ जो इसके बाद श्री रंगम के जो मुख्य पुजारी था ना, उसने रामानुज का बहुत बड़ा मान सम्मान होते हुए देखा तो उनके मन में आया कि ये रहेगा तो हमारा नाम नहीं रहेगा। तो उसने अपने घर के घर में बुलाया और अपनी पत्नी को कहा इसको विष दे दो, ये मर जाएगा तो हमारा। और घर में आया, पत्नी ने भोजन बनाया, पत्नी भी उस जैसी थी, लेकिन रामानुज को देख के कहा बेटा तुम ये खाना मत, इसमें विष मिला हुआ है। पत्नी ने कह दिया, रामानुज उसके चले गए, लेकिन अपने गुरु जी को कहते हैं जाके आखिर मैं इसके दिल में ये Why he has in heart something malice about me? Why he want to kill me with poison? उसने पत्नी ने कहा कि वो आया था और चला गया, तुमने खाया नहीं विष वाला, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ क्यों हो रही है। उसने एक दिन स्वयं आके उसको विष दिया, और रामानुज आचार्य ने उसको भगवान का प्रसाद और चरणामृत में मिला के आया, ले लिया, मरा नहीं, इसको आश्चर्य हुआ। और पंडित को बड़ा पछतावा हुआ, रामानुज आचार्य के चरण में आके गिरा, कहा मेरे से गलती हो गई, मैंने अपराध किया। फिर वो भी भक्त बन गया और शिष्य बन गया। ऐसे बड़े पंडित ने, इससे लगता है कि ऐसे महात्मा बड़े जो होते हैं उनको कितनी कठिनाई भोगनी पड़ती है। हरे कृष्ण। तो यहां इसके बाद जब आने से पहले पूछ रहे थे हम कि यमुना आचार्य जब श्रीपाद रामानुज आचार्य शरीर छोड़ने का समय आया तो शिष्य रोने लगे कि आप रुक जाइए 2-3 दिन और। तो उठ के बैठ गए और कहा अरे शरीर तो सबका छूटता है, इसके लिए आपको रोना नहीं चाहिए। तब कहा आपके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। तो रामानुज आचार्य ने अपने ही शरीर की मूर्ति बनाई अपने जीते जी, फिर उस मूर्ति में स्वयं उसके सर के ऊपर कुछ बोल के कहा अब मेरी जगह पे ये मेरा स्वरूप रहेगा, और उस मूर्ति को स्थापित करके और फिर शिष्यों के सामने उन्होंने ये शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम गए। तो वो मूर्ति अभी भी रामानुज आचार्य अपने हाथों से जाने से पहले बनाया, और उसमें मैंने बोला मैंने ये मेरा प्रतिनिधि है, आप इसकी सेवा करना। प्रभुपाद जी ऐसे अद्भुत आचार्य है, जीत व्हेन ही वाज अलाइव ही एस्टैब्लिश हिज डीटी ऑन द गोरनेथा अल्टर इन वृंदावन, व्हेन ही वाज अलाइव द मोर द डीटी वाज देयर. तो ये दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा, रामानुज डिड लाइक दैट. तो यहाँ श्रीपाद रामानुज आचार्य की, श्री प्रभुपाद की गाय.